हमने बला का पढ़ा था कि इब्तिला क्या चीज होती है, टेस्टिंग। अल्लाह ताला जरूर टेस्ट करेंगे, डेफिनेटली टेस्ट करेंगे। बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिएगा, टेस्ट आएगा। मैं आप सबसे कहूंगी कि ये आयत, आयत नंबर 155, 156 और 157 को आप याद कर लें, क्योंकि ये आपके काम आएंगी। कभी भी टेस्ट आए तो इंसान को याद आएगा कि मैंने कुरान में ये पढ़ा था, टेस्ट तो होना ही है, मैं कैसे बच सकती हूँ फिर, ठीक है। और यहाँ पे तो नुकसान की बात आई है ना, नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुस, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नुकसान से ही टेस्ट हो। यहाँ पे तो चूंकि हम उम्मत वसत की बात कर रहे हैं, तो जब इंसान ये काम करता है तो उस वक़्त नुकसान होता है, ऐसी बलाएं आती हैं, ऐसी मुश्किलात उसके ऊपर आती हैं, लेकिन आम हालात में भी उसकी आजमाइश होती है, और वो आजमाइश ज़रूरी नहीं नुकसान से ही हो, कभी अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है। सूरतुल फजर में जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, तो उसी से हमें पता चलता है कि कभी अल्लाह ताला दे के आजमाता है, तो इंसान सोचता है कि अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दे दी, बड़ी ये दे, हालांकि वो भी आजमाइश है, वो बड़ा फूले नहीं समाता, और ये भी आजमाइश है जब अल्लाह ताला कुछ ले लेता है। तो वो लोग जिनको कुछ मिला हुआ है, जो नुकसान से बचे हुए हैं, वो ये ना समझे कि उनकी आजमाइश नहीं हो रही, उनकी भी आजमाइश हो रही, बल्कि उनकी बहुत सख्त आजमाइश है। क्योंकि जब अल्लाह ताला दे के आजमाता है ना, इंसान को समझ ही नहीं आती कि मेरी आजमाइश हो रही है, और वो खुश रहता है, और वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करता, शुक्र नहीं अदा करता, वो अल्लाह की तरफ आता नहीं है, उन नेमतों को अल्लाह के काम में लगाता नहीं है, अपनी फुर्सत के औकात को अल्लाह के रास्ते में नहीं लगाता, वो इंसान बल्कि और अल्लाह से दूर होता जाता है, क्योंकि वो नेमतों में इतना ज़्यादा मगन हो जाता है कि उसको याद ही नहीं रहता मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है। ले इसके बरक्स अगर आप देखें, जो जब इंसान के ऊपर ऐसी आजमाइश आती है ना जिसमें उसको कोई नुकसान होता है, चाहे जान का, चाहे माल का, चाहे रिस्क रोजी का, चाहे खौफ से, भूख से, वो आजमाया जाता है, तो वो अल्लाह के करीब आ जाता है। तो ये आजमाइश देखा जाए तो, कि एक तो हमारी नजर दुनिया की हर चीज को देखती ना, यहाँ की हर तकलीफ हमें इतनी बड़ी लगती है, आखरत अभी हमारी नजरों से ओझल है, जिसकी नजर में आखरत है और दुनिया दोनों को वो सामने रख के देखता है ना, तो कंपेयर कर सकता है वो, फिर इंसान जानता है कि जो दुनिया की आजमाइश है ये तो बहुत हल्की है, बहुत छोटी है, अगर इससे मेरे गुनाह धुल सकते हैं और मैं पाक हो सकता हूँ तो ये तो बहुत बेहतर है उससे जो कि आखरत में आने वाली आजमाइशें हैं। तो आजमाइश को मांगना नहीं है, लेकिन आ जाए तो क्या रद्दे अमल होना चाहिए, क्या आपका रिस्पांस होना चाहिए, वो इस आयत के अंदर, और उस ऐसे बंदे को क्या इनाम मिलेगा वो भी इस आयत में हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब आगे देखिए आयत नंबर 158 में अल्लाह ताला ने सबर की ये एक दास्तान सुनाई है, सबर की एक निशानी है। बशीरी साबिरीन आया ना पीछे, और वसाइन सबरी वसलात भी आया, और इन्नल्लाह मा साबिरीन भी आया, सबर 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 की बात आती रही है। तो अब ये कैसे आयत इससे कनेक्टेड है कि देखिए सबर की निशानी, इन सफा वल मरवा तमिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। यूं तो हर चीज कायनात की अल्लाह की निशानी है ना, हर चीज कायनात की अल्लाह की याद दिला रही है, खास तौर पे सफा और मरवा का क्यों कहा गया कि जब इंसान हज पे जाता है ना तो उसके सामने ये खास निशानियां हैं, जो इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं, सबर सबर के ऊपर बात होती है, ये सबर की निशानी। इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान एक सबर वाली औरत दौड़ती रही, जो अपने बच्चे की प्यास से बेताब हो गई थी, और इसी को पसंद करके अल्लाह ताला ने ये सही जो रखी है हज और उम्रे के ऊपर, सही करना वो इसी की याद में, इसीलिए फरमाया फमन हज्जल बैता अवैतमरा फला जुनाह अलैही अन यतवफ बिहिमा, तो जो कोई हज करे अल्लाह के घर का या उम्रा करे उस पर कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं उस पर कि वो तवाफ करे इन दोनों का। अच्छा देखें ये बात कहने की जरूरत क्यों पेश आई, इसलिए कि इस्लाम से पहले मुशरिकीन मक्का भी सही किया करते थे, और उन्होंने सफा और मरवा पहाड़ियों के ऊपर दो बुत रखे हुए थे, और वो इन बुतों को यानी इन बुतों की ताजीम भी करते थे, जाहिर है उनकी पूजा करते थे, और इनके लिए भागते भी थे। तो अब मुसलमान, जब इस्लाम आया, मुसलमान कुछ कंफ्यूज हो गए कि क्या हम इनकी अब हम भी सही करें या नहीं करें। तो अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि तुम इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये बीबी हाजरा की सही की निशानियां। तो ये भी इब्ने अब्बास से ये भी मरवी है कि इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान बहुत से बुत थे और शयातीन रात भर इसके दरमियान घूमते रहते थे। इस्लाम के बाद लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके तवाफ के बारे में मसला पूछा तो ये आयत उतरी। ठीक है, सफा के ऊपर असाफ बुत था और नायला था मरवा पे, ये भी बुत का नाम था। तो मुशरिक लोग इनको चूमते थे, इनको छूते थे और बहुत इनकी ताजीम करते थे। हालांकि ये दो मर्द और औरत थे जिन्होंने बदकारी की थी, काबा में जिना किया था, तो अल्लाह ताला ने इनको पत्थर का बना दिया था। तो शुरू में तो लोगों ने इनसे बड़ी इबरत पकड़ी, इनको काबे के बाहर रख दिया, लेकिन कुछ जमाने के बाद फिर उन्हीं की इबादत शुरू हो गई। ये भी लोगों का अजीब एक तरीका होता है, आपको पता है ना, शुरू शुरू में किसी चीज को बुरा समझते, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी उन्हीं चीजों की ताजीम शुरू कर देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफा और मरवा का तवाफ किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ कर रहे थे तो आपका तहबंद जो था आपके टखनों के दरमियान इधर उधर रो रहा था और जुबान मुबारक से फरमाते जा रहे थे, लोगों दौड़ के चलो, अल्लाह ताला ने तुम पर सही लिख दी है, यानी सही फर्ज कर दिया। ठीक है ना, तो ये सही फर्ज है। तो यहाँ पे बीबी हाजरा ने सात फेरे लगाए थे, और आज भी देखे तवाफ का मतलब ये नहीं है कि सात फेरे जैसे काबा के आप फेरे लगाते हैं तवाफ करते हुए, तो इस तरह गोल दायरे में सात फेरे हैं, बल्कि ये सात दौड़े हैं, 3.5 फेरे बनते हैं। ठीक है, तवाफ के 3.5 फेरे अगर सर्कल बनाए तो, लेकिन अदरवाइज सात दौड़े हैं, सफा से स्टार्ट होके मरवा पे एक दौड़, मरवा से वापस सफा पे दूसरी दौड़, फिर सफा से मरवा तीसरी दौड़, तो इस तरह इसको गिनेंगे। तो चूंकि ये सही का फासला काफी जरा लंबा भी होता है, इंसान थक भी जाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया वमन ततवा खैरन फइन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम, जो भी खुशी से कोई नेकी करे तो अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है, बहुत जानने वाला है। यानी अपनी खुशी से कोई नेकी करना, उम्रा तो फर्ज नहीं है ना, लेकिन कोई भी अपनी खुशी से नेकी करेगा ना तो अल्लाह ताला कदर करने वाला है। अल्लाह की खातिर देखें, जो अपने आप को बेकदर कर दे ना, अल्लाह ताला उसका कदरदान हो जाता है, अपने आप को दौड़ा रहा है दौड़ा रहा है। तो देखें, इसीलिए जब आप उम्रे के लिए जाएं तो कोशिश करें, देखें इतना लंबा सफर होता है ना, आप खासतौर पर इतनी दूर से गए होते हैं तो वहाँ पहुँच के इंसान इतना थका होता है, फिर एयरपोर्ट पे भी मुशक्कत है, थकावट है। अब जब वहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो बजाय इसके कि हम शौक से जाएं, खुशी के साथ करें, मजबूरी बन जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है ना, थकन की वजह से सारा शौक ही ख़त्म हो जाता है, इंसान दुआएं तक मांगना भूल जाता है। तो अब जब यहाँ पहुँचते हैं सफा मरवा तक, अब तवाफ भी कर लिया, सब हो गया, तो अब तो बिल्कुल ही थकन से इतने हैं कि बस गिनते ही जा रहे हैं कि कितनी दौड़े हैं। जो उसका सही शऊर होना चाहिए कि इन चीज़ों को देख के, ये शायर अल्लाह हैं, अल्लाह की अलामात हैं, इनको देख के जो चीज़ें याद आनी चाहिए वो तो कहीं जेहन में भी नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि शायर क्या चीज़ होती है, वो चीज़ जो आपको किसी चीज़ की याद दिला दे। ठीक है, जैसे काबा को देख के कुछ याद आता है, कुरान को देख के कुछ याद आता है, ये शायर इल्ला है। तो सफा और मरवा आम सी दो पहाड़ियां नहीं कि जैसे दुनिया में कोई भी पहाड़ियां, मुसलमान के लिए ये क्या है, अल्लाह की याद दिलाने वाली। उस वक्त बीबी हाजरा की सही याद आनी चाहिए। तो लेकिन ये है कि हम खुद से कोई चीजों को शायर अल्लाह नहीं बना सकते, ये याद रखिएगा, खुद से नहीं आप कर सकते। ये भी जो अल्लाह और उसके रसूल ने जिन चीज़ों की बताया कि ये शायर अल्लाह हैं, वही होंगे और उन्हीं की ताजीम उसी तरह से की जाएगी जैसे सुन्नत से साबित है। ठीक है, खुद से अगर करेंगे तो इसी तरह बिदात और शिर्क का दरवाज़ा खुलता है फिर। कोई ये मसलन यहाँ पे कुछ बना ले और कहे कि ये शायर अल्लाह है, तो वो तो उससे नहीं बन जाता शायर अल्लाह, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि आप कोशिश कीजिए कि जब आप उमरे वगैरह के लिए जाएं तो वहां जाएं तो पहले थोड़ा सा आराम कर लें, जब आप थोड़ा थकावट आपकी दूर हो जाए तो फिर उमरे के लिए जाएं, ठीक है ना, ताकि आप शौक से कर सकें। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, इनको खुशी खुशी जो करेगा वो अल्लाह ताला उसकी कदरदानी करेगा। ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला बंदों के छोटे छोटे आमाल की भी कदरदानी करता है। सोचिए अगर आपकी अम्मी आपसे कहें बेटा वहां पहुंच के मुझे फोन कर लेना तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी, तो आप कहेंगे कि अम्मी क्यों नहीं करूंगी मैं फोन, भला ये कोई बात है आपकी, कहने की भी नहीं जरूरत है, मतलब ये तो आप शर्मिंदा से हो जाएंगे ना, अम्मी ये बात कह रही है। तो दो जहानों का रब कहता है कि तुम कोई भी नेकी करोगे ना अपनी खुशी से मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, सुभान अल्लाह। हालांकि नेकी तो हमारे अपने लिए है, हमें तो शर्म से सर झुका लेने चाहिए कि अल्लाह क्यों नहीं हम करेंगे, हम जरूर करेंगे, ठीक है, सुभान अल्लाह। तो ये देखें अगेन फिर वही बात आई जैसे हमने पिछले पारे में पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जहां खड़े होके काबा की तामीर की थी, अल्लाह पाक ने उस पत्थर को ऐसा बना दिया कि अब लोग जाते हैं तो उसके पीछे खड़े होके आपने तवाफ के नफल पढ़ने हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी उसको एक निशानी बना दिया, एक यादगार बना दिया। इसी तरह जब बीबी हाजरा अपने बच्चे को लेके एक बेआबो गया वादी में तने तनहा सिर्फ अल्लाह के हुक्म पे सिर्फ उसकी खातिर अपने आप को वहां पे अकेले बच्चे के साथ वहां पे रहना कबूल किया, तो अल्लाह ताला ने कैसी कदरदानी की। सफा और मरवा पे उनकी दौड़ तो बच्चे की प्यास के लिए थी, कोई इबादत के लिए नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने सब के लिए इसको इबादत बना दिया। तो ये चीजें ऐसी हैं, इनके साथ हमारी इमोशनल वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन ये इनके पीछे आपको हिस्ट्री पता होगी तो फिर ही इनके साथ कुछ अटैचमेंट होगी ना, अगर हिस्ट्री नहीं पता होगी तो फिर क्या शायर अल्लाह आपको क्या वहां पे याद आएगा। फिर इसीलिए जब लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, हज उमरे भी करके आ जाते हैं तो वैसे के वैसे ही होते हैं, तो जाहिर है इनके पीछे बैकग्राउंड तो पता ही नहीं है। आगे की अब ये जो आयात है आयत नंबर 162 तक एक ही टॉपिक है, और टॉपिक क्या है वो ये कि जो यहूद थे ना उनको अल्लाह ताला ने हुक्म किया दिया था कि आपने अपनी किताब में जो भी तालीमात हैं उनको लोगों तक पहुंचाना है। जैसे हम पिछले पारे से ये बात करते चले आ रहे हैं कि पहली उम्मत मुस्लिमा कौन सी थी, बनी इसराइल थे, ठीक है, उनके जिम्मे क्या काम था, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पैगाम नहीं पहुंचाया, क्यों, वो अपनी इस से गाफिल रहे अपनी ड्यूटी से, क्यों, इसलिए कि एक तो ये कि अल्लाह की तालीमात लोगों तक अगर सच सच पहुंचा दी तो देखिए फिर दुनिया कमाने का जरिया तो नहीं ना बनेगी, उन्होंने तो इन तालीमात को दुनिया कमाने का जरिया बना दिया, फिर इस तरफ से गाफिल हो गए, इसकी जिम्मेदारी को पहचाना नहीं, अपने लिए खास कर लिया इस किताब को कि हम ही बस पढ़ेंगे, कोई और जो हम आलिम आलिम लोग हैं ना बड़े बड़े तो हम ही बस पढ़ेंगे, बाकी आम लोगों को इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। फिर आम लोग जब फतवे पूछने आते थे उनसे दुनिया का देखें हमने कितनी दफा पढ़ा है, समनन कलीला थोड़ी कीमत पे इनको ना बेचो इन आयात को अल्लाह की, क्यों, इसलिए क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि जब कोई बात पूछने के लिए आता था तो उससे कोई पैसे ले लिए या और कोई और चीज ले ली, कोई ओहदा, मेरी जॉब सिक्योर रहे, मेरा ये लोग मुझे पूछते रहे, मेरी फॉलोइंग रहे, इसके लिए वो मन माने जैसे उनकी मर्जी होती थी, जो आया जैसे जो जो भी पूछने के लिए आया सवाली जैसी उसकी मर्जी होती उसी तरह का फतवा दे देते थे ताकि ये खुश होके जाए और हमारी फॉलोइंग खत्म ना हो, ठीक है ना। तो हक को छुपाते थे, और फिर इन्होंने हक को और कैसे छुपाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां थी इनकी किताबों में उनको छुपा दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली तो यहूदियों के ही ये काम थे, लेकिन यहां पे देखें आप एक बात नोट करें, बनी इसराइल नहीं कहा गया, बनी इसराइल के साथ स्पेसिफिक नहीं है ये आयत। जो भी अल्लाह की आयत को छुपाता है उसके लिए भी यही सजा है जो आगे बताई गई है। ठीक है, तो ये बात बहुत समझने की है। आप आयत को देखिए, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, क्या छुपाते हैं, मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, जो हमने नाजिल किया बय्यिनात में से और हुदा में से। बय्यिनात क्या है, रोशन निशानियों में से, और हुदा क्या है, हिदायत में से। यानी जो हमने लोगों की हिदायत का सामान नाजिल किया और खुली खुली बातें नाजिल की हैं, खुले खुले अहकामात नाजिल किए, बिल्कुल क्लियर है सारी बातें जो हमने नाजिल किया, उनको छुपाते हैं। किसके बाद छुपाते हैं, मिम बाद इमा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब, इसके बाद के हमने तो क्लियर कर दिए लोगों के लिए किताब में, हमने बिल्कुल लोगों को खोल खोल के बयान कर दिए, इसके बावजूद वो क्या करते हैं, वो छुपाते हैं। अल्लाह ने किस लिए नाजिल की थी ये, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए। ये क्या करते हैं, बजाय इसके कि लोगों को बताएं, खोल खोल के बताएं, क्या करते हैं, उनको छुपा लेते हैं। अब इनकी सजा क्या है, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु, ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह लानत करता है। मामूली बात नहीं है, अल्लाह लानत करता है। वा यलअनुहुमुल्लाइनून, और लानत करते हैं इन पर लानत करने वाले। कौन है लानत करने वाले, ये भी कहा जाता है कि बास फरिश्ते इसीलिए हैं कि उनका काम ही यही है कि वो सिर्फ लानत करते रहते हैं ऐसे लोगों पे जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत की है ना, उनके ऊपर वो बस लानत करते रहते हैं। और जानवर भी लानत करते हैं, एक जैसे कि हदीस में आता है कि जब खुश्क साली होती है, बारिश नहीं होती ना, तो चौपाए जानवर कहते हैं ये बनी आदम के गुनाहों की वजह से, उनके गुनाहों की शोमई किस्मत से अल्लाह ताला बनी आदम के गुनाहगारों पर लानत फरमाए, ये वो कहते हैं। देखें जरा, यानी जानवर भी लानत भेज रहे होते हैं, और जाहिर है बनी आदम के गुनाहगारों की वजह से बारिश बंद हुई भी है, वो बेचारे भी जाहिर है बारिश से महरूम हो गए, पानी से महरूम हो गए, तो वो फिर वो भी बद्दुआएं देते हैं गुनाहगारों को, इन बनी आदम के गुनाहगारों को, क्योंकि देखें बाकी तो मखलूक मासूम है, ये बनी आदम के गुनाह होते हैं जिनकी वजह से बारिशें बंद हो जाती हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह इनके गुनाहगार जो हैं इनके ऊपर लानत नाजिल कर कि ये जो है ना इनकी वजह से हम भी पानी से महरूम रह गए। तो सबसे बड़ा गुनाह क्या है, सबसे बड़ा गुनाह तो कितमाने हक है, कि हक को छुपा लेना जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने खुद लानत फरमा दी है। कितनी बड़ी सजा है कितमाने हक की। अब आप देखें, सिर्फ इसको इतना अपना जहन बंद करके ये ना सोचे वो यहूद ने ऐसे किया था ऐसे किया था, एक्चुअली अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बिफोर हैंड वॉर्न कर दिया है, समझ आई, बिफोर हैंड वॉर्न कर दिया है। ये ना हो कि ये देखो यहूद ने ऐसा किया था, तुम भी कहीं ऐसी हरकत ना करना कि जो किताब तुम्हें दी गई है और अल्लाह ताला ने इसमें क्या किया, इस किताब में बय्यिनात है और हुदा है ना, कुराने पाक के अहकामात हैं और हिदायत की बातें हैं ना, और अल्लाह ताला ने इनको खोल के बयान भी कर दिया लोगों के लिए, अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया ना, किया है कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्लियर कर दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्लियर किया था ना, तो अब क्या था, जिम्मेदारी किसकी है कि वो मेक श्योर करें कि आगे कुरान अल्लाह की ये किताब जो है, अनजलना से मुराद क्या है, मा अनजलना, जो हमने नाजिल किया अल्लाह की किताब, इस किताब की अब इस उम्मत पे जिम्मेदारी है कि वो इसको छुपाएं नहीं, वो इसको क्लियर करें, सब में फैलाएं, यहूदियों की तरह ना करें कि सिर्फ ये तो आलिमों का काम है पढ़ना, आम लोगों तक को तो कोई नहीं उनकी जिम्मेदारी। आप हमें बताएं, बहुत मुझे दुख होता है जब कोई लोग कहीं जाती हूँ, कोई लोग ये क्वेश्चन करते हैं ना, ये बताएं कि कुरान को सीखना कहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्ज है। ओ अल्लाह के बंदो, तुम्हें अभी तक यही नहीं समझ आई, तुम्हें कुरान पढ़ के तो देखो कितमान क्या है। देखिए याद रखें एक बात, समझ लें अच्छी तरह, दो ही चीजें हैं, या तो कुरान को बयान करना है, बय्यिना है ना, या तो कुरान को बयान करना है यानी इसको क्लियर करना है, इसको फैलाना है, और दूसरा इसका ऑपोजिट क्या है, क्या है इसका ऑपोजिट, छुपाना। अगर आप कुरान को फैला नहीं रहे, बयान नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं आप, इसको छुपा रहे हैं। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना, देखें, या तो आप कुरान को बयान कर रहे हैं या फिर छुपा रहे हैं। आप किन में से हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने लानत की है ऐसे लोगों पे, और लानत करने वाले भी लानत कर रहे हैं। अब इन आयतों को तो कोई खुदा का बंदा पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा ना कि कहाँ पे जरूरी है इसको सीखना। अभी तक तो हम इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सके कि सीखेंगे कब। अल्लाह अकबर। तो हम किन में से हैं ये पहले देखें। यहूद ने तो जो काम कर लिया उनके ऊपर तो इसीलिए लानत बरस गई ना। हम किन में से हैं? क्या हम छुपाने वालों में से हैं या फिर हम इसको फैलाने वालों में से हैं? देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी शरई उम्र की निस्बत किसी शरई अमर की निस्बत उससे सवाल किया जाए और वो उसको छुपा ले, उसे कयामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी। कोई भी शरीयत का हुक्म अगर उसको पता है और उसने उसको छुपा लिया है तो कयामत के दिन उसकी आग की लगाम दी जाएगी। मैंने बस छुपा लिया कि हमने नहीं बताना। और आप देखें, जैसे बिल्कुल ऑपोजिट इससे चीज देख लेना, जो लोग फैलाते हैं, मैंने आपको यह हदीस पहले भी सुनाई हुई है, जो लोग फैलाते हैं इस इल्म को, आलिम हैं, फैलाने वाले हैं, उनके लिए क्या है? याद है वो हदीस? उनके लिए हर चीज अस्तगफार करती है। यह हदीस में यहां तक कि समंदर की मछलियां भी उनके लिए अस्तगफार करती हैं। और ऑपोजिट इससे कर लिए, जो छुपाने वाले हैं उनके ऊपर क्या है? अल्लाह लानत करता है, फरिश्ते लानत करते हैं, सब लानत करने वाले लानत करते हैं, जो बेजुबान है या बाजुबान है जैसे भी हैं, वो जिस भी फॉर्म में वो लानत कर रहे हैं, और कयामत के दिन भी सब चीजें उन पर लानत करेंगी। अब कितनी बड़ी लानत का मुस्तहिक हो गया ऐसा इंसान। तो ये मामूली बात नहीं है, और ये मेरी आपकी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। देखें, आप पढ़ें इसको, इसमें कोई भी मैं अपनी तरफ से नहीं ऐड कर रही, आप इसको जरा एक एक लफ्ज के तर्जुमे के साथ देखें। फिर भी हम जागते नहीं और सोचते नहीं कि हमारा कोई काम है इस किताब की तरफ, हमारी कोई जिम्मेदारी है इस किताब की तरफ या नहीं है, कोई जिम्मेदारी है। इसके बाद भी हम सोच में पड़े कि हमने इस काम को करना है कि नहीं करना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते थे कि लोग कहते हैं अबू हुरैरा बहुत हदीसें बयान करता है, अगर कुरान में ये दो आयतें ना होती तो मैं ये बयान ना करता। फिर यही आयात पढ़ी, ये 159 160। यानी क्या चीज मुझे कंपेल करती है, क्या चीज मुझे इस तरफ चैन नहीं लेने देती, और मैं बयान क्यों करता हूं जो मैंने सीखा है? इसलिए कि अगर मैंने ये बयान ना किया तो समझ ले छुपा लिया ना, और अगर छुपा लिया तो ये उसकी सजा है। या तो आप अल्लाह की मखलूक की दुआओं की हकदार बन सकती हैं या उनकी लानत की हकदार बन सकती हैं, दोनों में से एक ही है ना। अगर इस इल्म को शेयर करेंगे, बेशक आप खुद अगर नहीं भी आगे बयान कर सकती, कम से कम जो कोशिशें इस रास्ते में हो रही उसमें वॉलंटियर कर दें, उसमें अपना हिस्सा डाल लें, अपने घरों के अंदर जो आप सीख रहे हैं कोई कैसेट क्लास कर लें, या और आप लोगों को कितने तरीके बताए गए किस तरह से आप इसमें हिस्सा डालें कि अल्लाह की किताब का इल्म फैले। भैया ना क्या होता है, खोल खोल के बयान कर देना, ऐलान कर देना, इसको फैलाना। तो सोचें, किताब के इल्म को छुपाना कोई मामूली बात नहीं है कि हम इसको मामूली समझ के और बैठे हैं और हमें अभी तक इसका एहसास ही नहीं है। लास्ट टाइम आपके लिए एक गेस्ट स्पीकर को बुलाया गया था और उन्होंने क्या बताया था कि जब भी आप काम करेंगे ये दीन को फैलाने का, दीन का, तो आपसे कोई पूछेगा कि आप क्यों ये कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो माई गॉड सेज दिस इन आवर बुक, है ना, माई गॉड सेज दिस, ये अल्लाह की किताब को फैलाना ही है ना, कि आपने किताब का एक यानी हुक्म फैला दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, लोगों को बता दिया कि मेरी किताब में ये लिखा हुआ है। अब आपको मैंने बताया था कि शहादत कितनी तरह की होती है, ये भी एक शहादत है ना। अब शहादत दे रहे हैं, हमने शहादत की बात पहले पढ़ी भी है। शहादत आप देते हैं सिर्फ अपनी बात से नहीं, शहादत तीन तरह की है। एक कौली शहादत है, यानी आप वो तो लोगों को बुला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि माई गॉड सेज दिस इन आवर बुक, ठीक है। अब बात को छुपाना नहीं, जब आपने ये कहा ना माई गॉड सेज दिस इन द बुक, जैसे मिसाल के तौर पे आप ऑनेस्ट हुए, तो दूसरा कहता है आपने इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर दिया स्टिल यू आर ऑनेस्ट, तो आप क्या कहेंगे कि बिकॉज माई गॉड सेज इन इन आवर बुक. तो आपने क्या किया, एक किताब का हुक्म दूसरे तक पहुंचा दिया. तो छुपाना नहीं, मुंह से बोल के आप जब पहुंचाते हैं तो क्या है, ये भी फैलाना है, ये भी बयाना है. इसमें किसी की परवाह किए बगैर अल्लाह ताला ने जो अहकामात या जो बातें या जो हिदायत या जो रहनुमाई इस किताब में दी है उसको आगे पहुंचा देना. नंबर टू शहादत कौन सी, अमली शहादत मैंने आपको बताई थी कि जब अल्लाह का पैगाम देने लगे तो आपका अमल भी इसकी शहादत दे रहा हो. ठीक है, आपका अमल भी शहादत दे रहा हो. जब आप कहते हैं अल्लाह अकबर, तो ये ना हो कि अमल ये कह रहा हो कि नहीं लोग अकबर हैं, आपके अमल में भी ये हो कि मैं अल्लाह को अकबर समझती हूं. जब आप ये कहते हैं इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, फिर ये ना कहें वो बड़े आदमी है ना, जिसको चाहे भाई जलील कर दें, जिसको चाहे इज्जत दे दें. नहीं, फिर ये कहो कि जिल्लत और इज्जत अल्लाह ही के हाथ में, आपके अमल से भी पता चलना चाहिए. तो मेरा हर अमल भी फिर बता रहा हूं, ये ना हो मैं दूसरे को कहूं आप देखें बेईमानी ना करें, ये गलत बात होती, और मैं अपने कारोबार में बेईमानी कर रही हूं. तो अमली शहादत तो नहीं ना आपने दी, कौन आपकी बात सुनेगा. देखें इस वक्त आप खुद बताएं, हर मजहब वाला या नेशनैलिटी वाले के बारे में कोई ना कोई व्यूज है ना लोगों के, कोई परसेप्शंस हैं, राइट, पब्लिक परसेप्शन जिसको कह सकते हैं. आप देख लें जो लोग ब्लैक हैं उनके बारे में एक परसेप्शन है, जब कोई काला आता है आदमी तो आपके जहन में कोई एक बात आती है. अब मैं नहीं कहूंगी, हाँ आप खुद जानते हैं, कोई ना कोई बात आती है. कोई आपके नेबरहुड में मूव हो जाए तो आपके जहन में कोई बात आती है. इसी तरह कोई स्पेनिश लोग हैं उनके बारे में आपके जहन में आती है ना एकदम कोई बात. फिर गोरे लोग हैं उनके बारे में भी आपके जहन में एक एक पब्लिक परसेप्शन चूंकि बन चुका है तो कोई बात आती है. आपने कभी सोचा मुसलमान के बारे में लोगों के जहन में क्या आता है, क्या पब्लिक परसेप्शन है बताएं. जाहिर है आप यही सोच रहे हैं कि नेगेटिव ही आता है. क्यों आता है ऐसा, इसलिए कि हमारे कुछ काम ऐसे हैं, हमने अपने अमल से शहादत नहीं दी अपने किताब की. हम अगर मुंह से जितना भी बोलें लेकिन हमारे अमल इसके ऑपोजिट है, इसको हमने बदलना है. हम अगर इसको बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो हमने इस्लाम की तबलीग की, हमने अपनी किताब की तबलीग की, हमने इसको फैला दिया कि मुसलमान का नाम आते ही दूसरे के जहन में क्या आना चाहिए, ओ बहुत ऑनेस्ट आदमी, सच्चा आदमी, हार्ड वर्किंग बंदा, पीसफुल बंदा. वो कोई मुसलमान हमारे नेबरहुड में मूव हो रहा है ना तो लोग खुश हो जाएं, अल्लाह कितने अच्छे लोग हमारे नेबरहुड में आ रहे हैं, मुसलमान लोग आ रहे हैं ना, कि लोग वहां से घर बेच बेच के भागना शुरू कर दें कि अब तो ये ऐसे लोग आ रहे हैं, गंदे लोग और ये ऐसे लोग. क्यों आज भी लोग गोरे नेबरहुड में क्यों मूव होना पसंद करते हैं, उनके कुछ परसेप्शंस हैं जिनकी वजह से ना. हमसे क्यों कतराते हैं, क्योंकि हमारा इमेज ऐसा ही बना हुआ है. तो फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, अमली शहादत देनी है कि हमारा खुद का अमल ऐसा हो जाए, तभी जब हम में से मेजॉरिटी ऐसी हो जाएगी ना, मैं नहीं कहती 100% लोग हों लेकिन मेजॉरिटी जब ऐसी हो जाएगी तो एक दिन हमारा इमेज जो आज है ना वो बदल जाएगा इंशाअल्लाह ताला. एक दिन आपको लोग किसी और तरह देखने लगेंगे और वो कहेंगे नहीं मीडिया जो भी कहता है, मेरे नेबरहुड में एक मुसलमान है, मेरी कुलीग एक मुसलमान है, मेरी फ्रेंड एक मुसलमान है, मेरी क्लास फेलो एक मुसलमान है, वो तो ऐसे हैं, हमने तो इनको बहुत अच्छा पाया, ये सब गलत है. अब हम क्या करते हैं, रोते रहते हैं, वो देखो हमारे खिलाफ, वो देखो हमारे खिलाफ, वो तो तुम्हारे खिलाफ सदियों से हो ही रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने उसको और प्रमोट ही किया ना अपने अमल से कि जो तुम कह रहे हो हाँ हम वैसे ही हैं. हमने भी तो यही किया ना, हमने तो अपोजिट करके नहीं दिखाया. तो ये है अमली शहादत. और ये बात ये तभी पूरी हो सकती है जब हम दूसरों से अच्छा सलूक करें, नफरतों को मिटा दें, क्या अपना पॉजिटिव रोल अदा करें सोसाइटी में जिस जगह पे भी. जैसे लास्ट टाइम एक लेक्चर में बात हुई थी, हमारे गेस्ट स्पीकर ने हमें बताया था कि हम सोसाइटी में अपना पॉजिटिव रोल अदा करें. देखें जिनके नबी दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए اس وقت ان کی امت کا کیا امیج ہے بتائیں؟ آپ کے نبی تو رحمت للعالمین کہلائے، تمام جانو گے، یعنی کہ رحمت للمسلمین ہے وہ، رحمت للعالمین، جن کے نبی کے بارے میں یہ آیا قرآن میں، اس امت کا کیا حال ہے؟ وہ بھی کسی پہ رحم کرتی ہے کہ نہیں؟ وہ تو پھر یہ پوچھتے ہیں سوال، ہم نے صدقہ دینا ہے، ڈونیشن دینا ہے، ہم غیر مسلم کو دے دیں؟ تو آپ کے نزدیک غیر مسلم کو انسان ہی نہیں ہے، اب آپ اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے تو آپ اس کے ساتھ کیا بھلائی کریں گے؟ یہ کام تو اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر خیر خائی ہو، بھلائی ہو، رحمت کے جذبات ہوں، جب آپ کا یہ حال ہو کہ جیسے آپ ایک اندھے کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک کلف سے گرنے لگا ہے، سامنے ایک کھائی ہے، اس کے اندر گرنے لگا ہے، اور وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا جا رہا ہے، آپ کے پاس آنکھیں ہیں، آج ہم اسی مقام پہ کھڑے، ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں وہ اندھا جا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو برا بھلا کہیں، اس سے نفرت کریں، دیکھو کتنا برا ہے، دیکھو ادھر چلتا جا رہا ہے، یا کیا کرنا چاہیے؟ ہمدردی ہونی چاہیے نا، یہ کس طرف جا رہا ہے، یہ آگ کے گڑے میں جا کے گرنے لگا ہے، واقعی وہ گرنے کی طرف جا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اس سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے یا برا بھلا کہنا چاہیے؟ ایک ڈاکٹر ایک مریض کا علاج کرے گا یا کیا کرے گا؟ اس کو برا بھلا کہے گا کہ تم بیمار کیوں ہو گئے؟ تو دیکھیں یہ بات تبھی ممکن ہے جب آپ کے اندر خیر خواہی ہو، جب آپ کے اندر دوسروں کی ہمدردی ہو، جب آپ کے اندر دوسروں کے ساتھ رحمت کے جذبات ہوں۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم دلوں میں نفرتیں پالے ہوں اور ہم کہیں کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، ایسے نہیں، دین نہ پھیلتا ہے، نہ اللہ کا کلام کسی اور تک آپ پہنچا سکتے۔ اور ایک اور بھی بات یاد رکھیے، آپ کا کام دوسروں کو مسلمان کرنا نہیں ہے خدا کے لیے، آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، بس اللہ کا پیغام پہنچا دیں گے تو اس لعنت کے اس سے نکل جائیں گے آپ، اور اگر اللہ کا پیغام نہیں پہنچاتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، آپ بھی اسی طرح دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں جیسے باقی سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، تو پھر یاد رکھیے اس لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں ہم، اور یہ لعنت آج پڑی بھی ہے مسلمانوں پہ۔ کیا نظر نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا دنیا میں نظر، یہ لعنت پڑی ہوئی ہے کیونکہ مسلمان نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ اگر بنی اسرائیل کے اوپر غضب اور لعنت برسی اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی تو سنت ایک ہی ہے، یہ نہیں کہ بنی اسرائیل اس کو پیارے نہیں تھے اور آپ بہت پیارے ہیں، ایسا نہیں ہے، سارے ہی اس کے بندے ہیں۔ تو اگر ان کے اوپر ایسا ہوا تو ہم بھی کوئی دور نہیں ہے، پھر ہم نے تو اور ہی برا کیا کہ ہم نے اس نبی کے جنہوں نے ہم سے دنیا سے جاتے وقت شہادت لی تھی اور جنہوں نے کہا تھا آگے پہنچا دینا، میرے سے آگے پہنچا دینا، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم پہنچاؤ وہ جو پہنچانے والے سے زیادہ وہ یاد رکھنے والا ہو، جنہوں نے یہ ہم سے عہد لیا، جن کو اتنا خوف تھا اس شہادت کا کہ وہاں میرے سے نہ پوچھ ہو جائے کہ تم نے یہ بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی، پوری بتائی کہ نہیں بتائی، تو ان کی امت کو آج کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو کون بتائے گا؟ بتائیں کون بتائے گا ان کو؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کل پوچھ لیا آپ سے مجھ سے کہ تمہارے پاس نوکری کرنے کا وقت تھا، شاپنگ کرنے کا وقت تھا، سیر سپاٹے کرنے کا وقت تھا، بننے سنورنے کا وقت تھا، کیا میرا کلام آگے پہنچانے کا وقت نہیں تھا تمہارے پاس؟ تو کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم نے تو خود نہیں اس کو کوئی امپورٹنس دی تو ہم نے آگے کیا پہنچانا تھا؟ بھائی ہم پہلے خود امپورٹنس دیں گے، اس کو سیکھنا ہے، اس قابل سمجھیں گے کہ اس کو سیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، تو پھر ہی آگے پہنچائیں گے نا۔ جب اتنی بھی اہمیت نہیں ہے ہماری زندگی میں اس کلام کی، اتنی سی بھی امپورٹنس نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ چند گھنٹے لگا دیں، تو ہم نے کیا دوسروں کو پہنچانا تھا؟ کیا خیال ہے؟ بھائی وہ ہی پہنچائے گا نا جس نے اس کو امپورٹنٹ سمجھا ہو، ہم تو ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ تو تیسری شہادت کون سی ہے، نمبر تھری شہادت کون سی ہے، یہ یاد رکھیے گا، اخروی شہادت، آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ سے میرے سے گواہی لیں گے۔ پیغمبروں سے کیا گواہی لی جائے گی، انہوں نے پہنچایا تھا یا نہیں، اس کے بعد ہم سے کیا گواہی لی جائے گی، ہم نے آگے پہنچایا کہ نہیں۔ اور آج اگر ہم صرف اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر لیں نا اور ان کو پوچھیں کہ ہم نے پہنچا دیا یا نہیں، تو وہ انکار کر دیں گے، پوچھئے گا آج ذرا، क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपने घर के लोगों को बताने से गुरेज करते हैं। हम इनको बताएंगे तो वो कहेंगे कि आप खुद तो अम्मी ऐसे करती ही नहीं है, आपने खुद तो ये किया नहीं, अब हमें बताने लगी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, तो अब मैं इसलिए बताती ही नहीं हूं। ऐसा ही है ना। तो हमारी सबसे पहले तो यहीं पे पकड़ हो जानी है। मौलाना मौदूदी बड़ी प्यारी वो बात कहते हैं कि इन बातों से तो घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें मांझने के लिए है, यानी ये बातें तो तुम्हारी सफाई करने के लिए, तुम्हें मांझ देंगी, इनसे ना घबराओ। अगर घर वाले ये कहते हैं, अपना तो आप देख लें, आप फिर हम अपने आप को फिक्स करेंगे, जाहिर है अगर घर वाले ऐसे कहेंगे तो। लेकिन हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, पहले दायरा कार घर से शुरू होगा, फिर और बाहर वालों तक, रिश्तेदारों तक। आपने अभी तक कितने लोगों तक पैगाम पहुंचाया कि आओ इस तरफ आ जाओ, इस कलाम की तरफ आ जाओ, ये मैंने पढ़ा है इसके अंदर, आज मैंने ये सीखा है, तुम भी आओ ये सीखो। कितने लोगों को बुलाया? बहुत सारे लोग तो किसी को कहते ही नहीं है, क्योंकि अगर कहेंगे तो वो कहेंगे तुम कितनी बैकवर्ड हो गई हो, तुम तो मुलानी बन गई हो, तुमने ये क्या शुरू कर दिया। हालांकि अब नबी के बाद मैं और आप, हम सब दाई हैं, और याद रखिए इसकी गवाही हमसे ली जाएगी, हमने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। क्या गवाही देंगी फिर आप उस वक्त, क्या कहेंगे? जवाब है हमारे पास। और ये तभी हो सकता है ये फैलाना भी, जब हमें खुद बताओ कि इस किताब में क्या है। लेकिन जाहिर है अमली शहादत भी आप तभी देंगे, और उखरवी शहादत भी आप तभी देंगे, कौली शहादत भी आप तभी देंगे, जाहिर है जब आपको खुद पता हो तो सही कि आपकी बुक में क्या है। क्या बताएंगे वरना, कि माय गॉड सेज दिस इन आवर बुक, क्या व्हाट, जब आपने कोई अमल ही नहीं किया। देखें यही इसी किताब की जब अमली तस्वीर आप खुद बन जाएंगे, तो अमल से आप शहादत दे रहे हैं ना, तो अमली तस्वीर आप कैसे बनेंगे, आपको तो खुद ही नहीं पता कि इसमें क्या है, और लोगों को बुलाएंगे किस तरफ, आपको खुद ही नहीं पता कि आपकी बुक में क्या लिखा। उखरवी शहादत किस बात की देंगे कि हमने फैलाया, क्या फैलाया, आपको खुद ही नहीं पता, तो कोई शहादत भी नहीं दी जा सकती। अगर आप ये फर्स्ट स्टेप से ना गुजरें, इसको सीखें, इसको समझें, इसको फिर अपनी जिंदगी लगा दें इसको फैलाने में, ये कल को जब हम अल्लाह के आगे खड़े हों, तो कम अज कम हम ये तो कह सके हैं, अल्लाह हमने अपनी तरफ से कोशिश की, अल्लाह हमने अपना वक्त लगाया, हमने अपनी सलाहियतें लगाई, अल्लाह हमने अपनी कुव्वतें लगा दी थी, हमने दुनिया में जहां पे और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी, इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के अदा किया, हम दिन रात इसी में लगे रहे, कम अज कम हम ये तो कह सके। और अगर ये ही नहीं कह सके तो फिर किसकी पकड़ होगी। अगर एक बंदे की आंखें हैं बताएं, और वो अपने सामने देख रहा है कि एक अंधा गिरने लगा है आग के अंदर जाके, गड़ा है उसके अंदर, आग भरी हुई है, उस बेचारे को तो नजर नहीं आता, और तुझे तो नजर आ रहा है, तो कितनी संग दिली है, कितनी बेरहमी है, कितना बड़ा ये जुल्म है कि ये बंदा देख रहा है और फिर भी वो टस से मस नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम सब देख नहीं रहे आज कि इंसानियत किस तरफ जा रही है? जो शिर्क करके मर जाएगा वो किधर जाएगा? जो कौमे लूत वाला अमल करके मर जाएगा वो किधर जाएगा? हमें नजर आता है ना, फिर भी हम टस से मस नहीं होते, व्हाट डू वी केयर, हमें क्या इसका। अल्लाह अकबर। वैसे हम बहुत रहम दिल बनते हैं, ये रहम है कि इंसानियत को आग के गड़े में गिरने से बचा लो, इसीलिए ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि अगर किसी ने इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, क्योंकि फिर देखे ना इसकी वजह से कितने लोग हैं जो आग में उस दिन गिर रहे होंगे, क्योंकि तुमने अपना काम नहीं किया। कितने लोग हैं जो हिदायत से महरूम रह गए, कितने लोग हैं जिन तक ये बयनात नहीं पहुंची जो अल्लाह ने नाजिल की, तो अब पकड़ किसकी होनी चाहिए? इस बंदे की जो आंखों लेके खड़ा हुआ था, तुमने हक को छुपाया। तो हक को पहुंचाना है, अपने मुसलमानों तक भी पहुंचाओ खुदा के लिए, ये अपने मुसलमान भी आज अंधे ही हैं, वो भी आग की तरफ जा रहे हैं, तो इस लानत के अंदर कब तक रहोगे? ये लानत कभी उतर सकती है? अगर लानत पड़ी गई है तो अब इसमें से निकलने का कोई रास्ता है? हाँ रास्ता है। अगली आयत देखें, इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की। अगर तुम, तौबा का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पलट आना, ठीक है, पलट आना। अगर तुम पलट आओगे, रजू कर लो, वापिस आ जाओ, नहीं अल्लाह गलती हो गई, माफ कर दे, हमने ये किया, वह असलाहू और करेक्ट योर सेल्फ, फिक्स योर सेल्फ, इसलाह करो अपनी, तब इसलाह कैसे होगी, वह बैयनू और बयान करो, जो अब तक छुपाते रहे उसको बयान कर दो, क्लियर कर दो। किस चीज को बयान करें? इस किताब को। फउलाइका तूबू अलैहिम, तो अब है यही वो लोग हैं जिन पे मैं मेहरबान होता हूं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला मेहरबान होता है। ये नहीं है कि अब आप कुछ करें ही नहीं और कहें अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हे हमने तो बड़ा गुनाह किया, और उसके बाद फिर बैठ जाए। नहीं, देखिए आगे, वह असलाहु, इसलाह करें ना, अब जो गलती कर रहे थे अब उसको फिक्स कर लें और बयान करना शुरू कर दें इसको, तो तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तब मैं मेहरबान होता हूं। हम तो खालम खुली इस्तग़फ़ार की तस्बीहां करके, आयत करीमा का दौर करके और सोचते हैं कि बस अल्लाह ताला अब मेहरबान हो गया हम पे। नहीं, तौबा की शर्त में ये भी है कि इंसान जब तौबा करता है ना, या अब जब भी आप तौबा इस्तग़फ़ार करें, तो जो जिस अमल पे आप तौबा कर रहे हैं कि अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, नाउ फिक्स इट ना, वरना तो सिर्फ ये झूठी तौबा है। जैसे हज़रत अली ने किसी को देखा था तो वो इस तरह ऐसे ऐसे तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार इस तरह करता जा रहा था, उन्होंने कहा ये काज़िबीन की तौबा है, झूठों की तौबा है। क्योंकि जब आप अपने आप को फिक्स ही नहीं करते, इसलाह ही नहीं करते, किस बात पे आप तौबा करें? आप देखें कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, या अल्लाह मैंने ये गलत किया, तो अगर गलत किया तो अब इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। हम उन कामों को छोड़ते भी नहीं है, करते भी चले जाते हैं और कहते हैं अल्लाह हमारी तौबा, अल्लाह हमारी तौबा, तो फिर किस बात पे तौबा मांग रहे हैं आप, अगर आपने अमल ही सही नहीं किया अपना। तो याद रखें, सिर्फ तस्बीहां कर लेने से काम नहीं बनेगा, ये कोई तौबा नहीं है। तौबा वही आपकी तौबा एक्सेप्टेड है जिसमें आप फिर अपनी इसलाह कर लें, इस चीज की फिक्र करें। हर बंदा फिक्र करे, मैंने कैसे इस पैगाम को आगे पहुंचाना है, हर बंदा, ईच वन ऑफ यू, हमें से हर एक को एम्बेसडर बन जाना है इस दीन का। एम्बेसडर, एम्बेसडर कैसे बनते हैं? एम्बेसडर जो होता है, क्या वो अपने मुल्क के बारे में कुछ जानता है? आपके यहाँ पे एम्बेसडर आपके मुल्क के होंगे या नहीं जानता, उसे जाके पूछें भाई तुम जिस मुल्क के एम्बेसडर हो उसके बारे में क्या जानते हो, वो कहे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, तो किस बात के एम्बेसडर हो? तो अगर हम सफीर बन रहे हैं ना इस्लाम के, तो हमें फिर इस्लाम के बारे में पता होना चाहिए, इस कुरान के बारे में मालूमात होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम इसके सफीर बनेंगे, इसके नुमाइंदे बनेंगे, इसके एम्बेसडर बनेंगे। तो तब जब हम बयान करने लगेंगे, इसके काम करने लगेंगे जो आज तक हमने गफलत की है, इसको छोड़ देंगे, तब जाके ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी तौबा भी कबूल होगी, वो मेहरबान होगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अना तवाब रहीम, मैं तो बार बार तौबा को कबूल करने, तवाब अल्लाह ताला का एक नाम है कि जो बार बार, तो ये नहीं कि एक दफा तुमने कर लिया अब गलती हो गई तो अब जो है ना अब दोबारा कभी तुम्हें माफ नहीं करना, नहीं, बार बार तौबा कबूल करता है, बार बार करता है। अतूब क्या फेल है, और ये तवाब अल्लाह ताला का नाम है, उसकी सिफत है, ठीक है। तो इसके बाद तो हमारे अंदर देखिए कुछ जिम्मेदारी का एहसास जागना चाहिए ना। कुछ आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कोई मैं इन कोशिशों का हिस्सा ही बन जाऊं जो गियर टुवर्ड्स दिस गोल है। कुछ अपना, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। और इस बात को जहन से निकाल दें कि कुरान आलमों के पढ़ने के लिए है, ये उनके पढ़ने के लिए है, ये फलाने के पढ़ने के लिए है, इसलिए कि ये हर एक की जिम्मेदारी है। और जो भी छुपाएगा उसने इसका हक अदा नहीं किया, और अगर वो पढ़ भी रहा है उसके बावजूद भी उसके ऊपर फिर लानत की गई है, क्योंकि उसने इसकी जिम्मेदारी नहीं अदा की। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि मैं आज आपको पढ़ाने के लिए बैठी हूँ। ये नहीं है कि मैं कोई मुकम्मल इंसान हूँ, मैं कोई गलती नहीं करती, मैं कोई परफेक्ट हूँ, नो। सिर्फ इस वजह से कि जो सीखा है उसको आगे पहुंचा दिया जाए, अगर नहीं पहुंचाती तो इस लानत की मुस्तहिक होती। बहुत सारे लोग इस चीज पे इतराज करते हैं, लो भाई फलाने के पास क्या है, फलां के पास क्या डिग्री है, फलाने ने तो आलमों का नहीं किया हुआ, फलां तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया बल्लिगानी वलौ आया, मुझसे पहुंचा दो आगे चाहे एक आयत ही हो, एक आयत भी आपको आ गई है ना तो वो भी आगे पहुंचा दे। जो भी सीखा है, तो मैं खुद कुरान की स्टूडेंट हूं और अल्लाह ताला हमेशा स्टूडेंट ही रखे, तो जो भी मैंने सीखा वो मैं आपको आगे दे दूंगी, आप आगे और दें और इसको फैलाएं। सिर्फ इसको सीख लेना एक बात नहीं है, ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हो गई। देखे मैं वो है ना, किसी शायर ने कहा है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हम मुसलमान भी इसीलिए, हम नमाजी भी इसीलिए, अल्लाह के दीन की सरफराजी हो, यही जिंदगी का मकसद होना चाहिए। इन्नल्लज़ीन कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया। अब देखें कुफर कुरान पाक में जब भी आता है ना तो आपको ये भी देखना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। कुफर का मतलब इनकार करना, छुपाना, राइट, ये ना मतलब आपको आता है ना, यहां पे क्या मतलब है, अभी क्या बात चली आ रही, कॉन्टेक्स्ट देखें। जिन लोगों ने इस बात को नहीं माना, नहीं तौबा की, जिन्होंने छुपाया, स्टिल छुपाते रहे, वह मातू और मर गए, इसी हाल में मर गए, वह हुम कुफारून, इस हाल में कि वो काफिर ही थे, छुपाते ही रहे थे, उन्होंने कभी नहीं कोशिश की कि इसको फैलाया जाए। अब क्या उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, अब सिर्फ उनके ऊपर अल्लाह की लानत नहीं है बल्कि अल्लाह की तो लानत है ही, वल मलाइकती और फरिश्तों की, वन्नासी अजमाइन और लोगों की भी, सब के सब की। इसलिए ये कौन लोग हैं जिन तक पैगाम ही नहीं पहुंचा, दुनिया से वो यूं ही चले गए, और वो भी लानत करेंगे कि इन लोगों ने तो हमें कभी बताया ही नहीं, ये तो वही सारे काम करते थे जो हम करते थे, इनके पास हक था फिर भी इन्होंने छुपाया। हम क्रिसमस करते थे ये भी क्रिसमस करते थे, हम जैसे कपड़े पहनते थे ये भी वैसे कपड़े पहनते थे, हम जैसा रहन सहन रखते थे ये भी वैसा रहन सहन रखते थे, हम जो वैलेंटाइन करते थे ये भी वैलेंटाइन करते, ये तो सारी चीजें वही करते थे जो हम करते थे, इनके अंदर और हमारे अंदर तो कोई फर्क ही नहीं था। इन्होंने हमें क्या पैगाम देना था, ये तो हम जैसे ही थे। वो लोग भी लानत करेंगे क्योंकि इनकी वजह से आज हम आग में हैं। खालिदीन फीहा, और फिर ये नहीं है कि ये कोई एक दो दिन की बात नहीं, हमेशा रहने वाले हैं इसमें। ला युखफ्फफु अन्हुम अल-अज़ाब, नहीं हल्का किया जाएगा उनसे अज़ाब, वला हुम युन्ज़रून, और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे, कोई ब्रेक भी नहीं आएगी अजाब में कि कोई वक्फा आ जाए, कोई वक्फा मिल जाए कि जरा ठहर जाओ, मैं पिछले अजाब से तो रिकवर हो जाऊं, मुसलसल अजाब होता रहेगा, मुसलसल, और हल्का भी नहीं किया जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होगी, सेम शिद्दत रहेगी उसकी, बल्कि कई जगह पे आया कि बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम क्या होना है, लाइट नहीं होगा वो। आप देख रहे हैं, अगर कुरान इंसानियत से छुपा के रखा गया तो ये है सजा, ये है सजा। और कितने मुसलमान हैं आज दुनिया में, क्रिश्चियनिटी के बाद जो सबसे बड़ा मजहब है ना इस दुनिया में वो है इस्लाम, इसके बावजूद कितना इस्लाम फैल रहा है, क्योंकि मुसलमान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, नहीं समझते इसको अपनी जिम्मेदारी कि हमने इसको फैलाना है। तो ये आयात हमारे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग आयात हैं, और हमें बहुत ज़्यादा इसके बाद एहसास ये जागना चाहिए कि हमने क्या करना है, अपने लिए प्लान करना चाहिए। और इस सिलसिले में एक और आपको बात बता दूं, क्योंकि ये حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا جائے اور اس نے اس کو چھپایا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. چھپانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھیلانا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا، اگر پھیلایا نہیں تو چھپایا. ایک اور بات یہاں پہ آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، لعنت کے اوپر. لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غضب کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دیں تو وہ لعنت ہے. تو لعنت کی بھی تین قسمیں ہیں. ایک تو لعنت وہ ہے جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، کافروں پہ اللہ کی لعنت، فاسقوں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. یا حدیث میں ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں یا جو عورتیں مردوں کی جیسے بن کے رہتی ہیں نا، ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. تو ایک تو یہ لعنت ہے نا، جو شریعت میں عام، مطلب ایک اس جنرل ایک بات کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر کوئی اسپیسیفک بندے کے اوپر نہیں کہ فلاں بندے کے اوپر لعنت، بلکہ جو بھی کافر ہیں، جو بھی جھوٹے ہیں، جو ان کے اوپر لعنت. جیسے یہاں پہ جو بھی کتمان کرتے ہیں حق کا، حق کو چھپاتے ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے. نمبر ٹو لعنت ہے جو شخص، جس شخص کی موت کفر کے اوپر ہو اور 100% شور ہے کہ اس کے کفر کے اوپر موت ہے، اس پر بھی لعنت کرنا جائز ہے. جیسے ابلیس کے اوپر، جیسے ابو لہب کے اوپر، جیسے ابو جہل کے اوپر، ان کے اوپر لعنت کرنا جائز. تیسری وہ ہے جو شخص اس وقت اپنے حال کے اعتبار سے تو مومن ہے یا کافر ہے، اور اس کا کفر پہ مرنا آپ کو پتا نہیں ہے، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق دے دے. اور ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بہت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. اور اب جو لوگ لعنت ہر وقت بھیجتے رہتے ہیں، فلانے کے اوپر لعنت، فلاں کے اوپر لعنت، تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس شخص پہ لعنت کی جو لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو وہ لعنت لعنت کرنے والے پہ لوٹ آئے گی. یعنی وہ لعنت اوپر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے، اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، کیونکہ وہ اس بندے کے اوپر وہ لعنت کا ڈیزرو ہی نہیں کرتا. لیکن اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو عورتیں بھی بہت زیادہ جہنم میں کیوں ہوں گی، کہ وہ لعنت بہت کرتی ہیں. اس لیے خاص طور پہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اپنے بچوں پہ بھی لعنت کر دیتی ہیں. اور لعنت صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ لفظ لعنت کا بولا جائے کہ اس کے اوپر لعنت ہو، بلکہ جو بھی الفاظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں وہ بھی سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. مثلا ہے کہ مثلا اس کے اوپر پھٹکار ہو، اس کے اوپر مار ہو، اس کے اوپر فلاں ہو، کہ کئی ورڈز ہیں جو اسپیسیفک لعنت ہی کے لیے یعنی استعمال ہوتے ہیں، ایسی بات کی جاتی ہے. ایسے تمام الفاظ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. تو کیونکہ یہ ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب جیسے آپ لوگوں کو خود بھی پتا ہوگا کہ کوئی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو کہ لعنت کے زمرے میں آتی ہیں، تو ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا نہ کریں، ان الفاظ سے بچ کے رہیں. اگر آپ کا تکیہ کلام ہی ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کسی کو پھٹکار دے رہے ہیں، اس کے منہ پہ پھٹکار ہے، فٹے کا لفظ بول رہے ہیں اس کے منہ پہ، یا کچھ اور لعنت کے، اس کے اوپر مار ہو، اس کے اوپر فلاں ہو، اس کے یہ ہو، تو یہ ساری جو لعنت کی چیزیں ہیں نا، اگر آپ بولیں گے، ایک تو یہ کہ اس زمرے میں آ جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں بہت زیادہ جہنم میں ہوں گی. ان کی ایک وجہ کیا ہے کہ لعنت بہت بھیجتی ہیں. اور دوسری کیا بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لعنت واپس آپ کے اوپر لوٹ آئے گی. اوکے، ظاہر ہے آپ جس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، اگر وہ اس کا ڈیزرو نہیں کرتا تو اسی کے اوپر واپس آ جائے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جب آپ کسی کو یہ بدعا دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائے، اس کی رضا سے دور ہو جائے، اس کے قرب سے دور ہو جائے. اسی طرح جو بندہ، یہ بھی بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جو بندہ فوت ہو جائے اس پر لعنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا، فوت ہونے والا بندہ جو ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، تو بہتر ہے کہ انسان اس کے اوپر لعنت نہ کرے. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس حال میں مرا ہے، جس وقت وہ مرا ہے کیا اس کی ایمان کی حالت تھی، کیا کفر پہ مرا ہے یا اسلام پہ، کیا ایمان تو نہیں تھا اس میں. تو اس لیے جو ہے نا، لعنت भेजना कोई अच्छी बात नहीं है कि इंसान बात बात के ऊपर लानत के अल्फाज बोले और इसको अपना तकिया कलाम बना ले। खुद सोचें कि जो औरतें अगर अपने अपनी औलाद को ये बात कहती हैं तो वो कितनी बुरी बात कह रही होती हैं, जबकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे किन लोगों के लिए लानत के अल्फाज फरमाए हैं। तो आप ये देखें कि जिंदगी में इंसान के पास चांस है कि वो अपने अमल को बदल के, तौबा करके, इसलाह करके और ये काम शुरू कर सकता है और इस लानत से बच सकता है, लेकिन मर गया अगर इसी हालत के अंदर और उसने ये काम नहीं किए और इसी में जिंदगी में भी रहा और मौत भी इसी के ऊपर आ गई, तो ऐसे शख्स को तो फिर कोई भी यानी अल्लाह की लानत और फरिश्तों की लानत से बचा नहीं सकता। अब आप ये देख लेना यहाँ पे कि जब लानत का मामला इतना शदीद है कि एक बात समझें, इतना शदीद है कि उस वक्त तक आप लानत नहीं कर सकते जब तक इसका यकीन ना हो जाए कि उस बंदे की मौत कुफर पे हुई, तो किसी मुसलमान पे या किसी जानवर पे लानत आप कैसे कर सकते। अच्छा, ये मर्दूद लफ्ज जो है ना, ये भी लानत का, रांदा दरगाह होना ये लफ्ज कहना भी लानत का, अल्लाह मारा ये लफ्ज कहना भी, ये भी लानत के उसमें आता है। ठीक है, चलिए यहां तक हम तिलावत सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला।
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
एक और हदीस आती है बुखारी की है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में एक अब्दुल्ला नाम का शख्स था जो जिसका लकब हिमार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको शराब नोशी पे हद लगाया करते थे, शराब पी लेता था तो उसके ऊपर हद जारी होती थी। एक दिन उस शख्स को हद लगाई जा रही थी कि मुसलमानों में से एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह इस पे लानत कर, इसको कितनी दफा हद लगाई गई है फिर भी नहीं बाज आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको लानत ना करो, बखुदा तुमको नहीं पता ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। देखे ना, कोई इंसान को किसी को गुनाह कबीरा में देख के बंदा कह देता है लानत हो इनके ऊपर कि ये इस तरह से कर रहे हैं। आप हालांकि वो शराब पीता था और बार बार शराब पी लेता था तो इसलिए उसको हद बार बार लगाई जाती थी। तो इसलिए एक बंदे ने देख के जब ये कहा, एक मतलब बड़ा गुनाह कर रहा था वो, कि भाई इतनी दफा इसको हद लगाई गई फिर भी नहीं बाज आता तो इसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, नहीं आपको क्या पता किसी के दिल में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो, वो कोई गुनाह कबीरा में भी अगर पड़ा हुआ है तो आप ये नहीं जानते कि उसके दिल का हाल क्या है।